الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں ہم سورہ مائدہ کی تفسیر پڑھتے ہیں، معارف القرآن جلد نمبر 3 سے، اور دوسری آیت ہی کی تفسیر پچھلے کچھ دنوں سے چل رہی ہے، پچھلی کچھ کلاسز سے چل رہی ہے، کیونکہ کلاسز ہماری صرف پیر اور بدھ کو فی الحال ہوتی ہیں. تو معارف و مسائل پر ہم تھے اس آیت کی صفحہ نمبر 21، اس کی 21 کے اوپر، اور اس آیت کے اس حصے کی تفسیر پڑھ رہے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی ایک دوسرے سے تعاون کرو، ایک دوسرے کو مدد کرو، اسسٹ کرو بر کے اوپر، نیکی کے اوپر اور تقوی کے اوپر، اور نہیں تعاون کرو ایک دوسرے کے ساتھ گناہ کے اوپر اور سرکشی کے اوپر، عدوان کے اوپر. رائٹ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرو. اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی تفسیر ہم نے یہاں تک پڑھ لی تھی، صفحہ نمبر 21 پر ہی نا پہلا پیراگراف جو ہم نے مکمل کر لیا تھا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا بنایا ہے، ہماری مزاج کو ایسا بنایا ہے، ہماری ضرورتوں کو ایسا بنایا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے تعاون کے بغیر اس دنیا میں رہ نہیں سکتے، اور ہمارا کام جو ہے وہ چل نہیں سکتا. تو گویا کہ یہ ایک طرح کی ہماری مجبوری اللہ رب العزت نے بنا دی ہے، تو یہ ہماری چوائس کے اوپر نہیں چھوڑا ہے کہ ہم یعنی چاہیں تو ایک دوسرے کی مدد کریں، اور نہ چاہیں تو ہم اکیلے بھی زندہ رہ سکتے ہیں، بغیر کسی کی مدد کے، بغیر کسی کے تعاون کے بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں. ایسا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بات، ایک منٹ، ٹھیک ہے، تو یہ بات ہم نے آخری کری تھی، اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اگر یہ تقسیم کار کسی حکومت یا بین الاقوامی ادارے کی طرف سے بصورت قانون بھی کر دی جاتی تو اس کا بھی وہی انجام ہوتا جو آج پوری دنیا میں دنیا کے قانون کا ہو رہا ہے. یعنی اگر اگین کسی ملک کے اندر جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے، لیکن اس ملک کی حکومت لوگوں کو حکم کرتی کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور اگر نہیں کرو گے تو تمہیں سزا ملے گی، اور اگر کرو گے تو ہم تمہیں فائدے دیں گے، پرکس دیں گے، ٹھیک ہے، انسینٹیوز دیں گے، تو پھر بھی یہ معاملہ نہیں چل سکتا تھا، بلکہ اس کی حیثیت وہی پیپر کے اندر لکھے ہوئے قانون کی سی ہو جاتی، جس کی امپلیمنٹیشن جو ہے یا تو بالکل ہی نہیں ہوتی، یا اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ آؤٹورڈلی ہوتی ہے انورڈلی نہیں ہوتی، یا اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ غریبوں پر تو ہوتی ہے، کمزوروں پر تو ہوتی ہے، امیروں اور طاقتوروں پر نہیں ہوتی. ہے نا، دنیا کے اندر جو قوانین بنتے ہیں تو اس کے اندر تو پھر اسی طرح کی اس کی گت بنتی ہے. ٹھیک ہے، یا تو بالکل ہی نہیں ہوتا اس کے اوپر عمل، جیسے ہمارے ملک کے اندر فار ایگزامپل، یا نائجیریا بھی بڑا مشہور ہے کرپشن کے اندر سب سے آگے. ٹھیک ہے، ایسے ملکوں کے اندر بالکل ہی نہیں ہوتی، یا یہ کہ آؤٹورڈلی ہوتی انورڈلی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا، یعنی جو ہے وہ دل سے نہیں کر رہے ہوتے، اوپر اوپر سے جو ہے وہ जोर जबरदस्ती की पिटाई के खौफ की वजह से जो है वो हुकूमत के कर रहे होते, और जहां पे हुकूमत नहीं देख सकती तो वहां पे नहीं कर रहे होते, ठीक है। या तीसरी सूरत क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन होती लेकिन कमजोरों और गरीबों पर होती, अमीरों और ताकतवरों पर नहीं होती, ठीक है। दुनिया के कानून का यही मामला होता है, चाहे जहां के भी कानून, ठीक है ना, जिस चाहे वो दुनियावी हुकूमतों के कानून हो, चाहे वो दीनी हुकूमतों के कानून हो, चाहे वो इस्लाम के कानून हो, चाहे वो कुफर के किसी मजहब के कानून हो, कानून के साथ यही होता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कानून बिल्कुल नहीं होने चाहिए, नहीं, कानून होने चाहिए, ठीक है ना, वो बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम बिल्कुल एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। वो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि अल्लाह की शान, अल्लाह की अजमत, राइट, अल्लाह की कुदरत, हम उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, उस सियाक व सबाक में बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। ये नहीं बात करें कि कौन सा कानून अच्छा है, कौन सा कानून बुरा है, और कौन सा कानून जो है वो हमें करना चाहिए, कौन सा कानून हमें नहीं करना चाहिए। नो, दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन, ऑल टुगेदर, ठीक है। तो अल्लाह की शान ये है कि अल्लाह ने तख्लीक किया है और हमारे मिजाजों को भी तख्लीक किया है, सिर्फ हमारे हड्डियों को तख्लीक नहीं किया, ठीक है ना, हमारे चेहरे को तख्लीक नहीं किया, हमारे मिजाजों को, बल्कि हमारी जरूरियात को भी तख्लीक किया अल्लाह रब्बुल इज्जत। कहने का मकसद क्या कि दिस इज हाउ मच अल्लाह इज इन कंट्रोल, राइट। हम अल्लाह ताला के कंट्रोल को जो है ना वो समझते हैं, कुछ बड़ा बड़ा मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, या गलती से कर जाते हैं मिनिमाइज अल्लाह ताला के कंट्रोल को। नहीं, अल्लाह ताला का कंट्रोल मिनिमाइज नहीं कर सकते, हमें समझ नहीं, हमें नजर नहीं आता अल्लाह ताला का कंट्रोल, ठीक है। इस वजह से हम जो है वो समझते हैं कि कैसे के नहीं है, हम अपनी मर्जी चला रहे हैं, कोई नहीं ऐसा। अच्छा, बाजार दफातर में रिश्वत, बेजा रियायत, फर्ज नाशनासी और बेअमली का कानून चल रहा है, ये महज हकीमुल हकमा कादिर मुतलक का इलाही निजाम है कि मुख्तलिफ लोगों के दिलों में मुख्तलिफ कारोबार की उमंग और सलाहियत पैदा कर दी। उन्होंने अपनी अपनी जिंदगी का महवर इसी काम को बना दिया, ठीक है, ठीक है। लोगों ने अपने रोल्स जो जो अल्लाह ताला चाहते थे ना, अल्लाह ताला ने उसकी जो है वो उनके अंदर तलब पैदा कर दी, चाहत पैदा कर दी, ठीक है। अच्छा, ये जो बात हुई अभी कि रोल्स की चाहत पैदा कर दी, किसने पैदा कर दी? अल्लाह ने पैदा कर दी, ठीक है ना, अल्लाह ताला ने ये हमारी फितरत में डाल दिया। लेकिन क्या इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जो भेजा है ना, फितरत पैदा करके हमारे अंदर अल्लाह ताला ने भेजा है, ठीक है, तो क्या इस दुनिया में आने के बाद हम सारे के सारे इसी फितरत पर रह पाते हैं, हम कंटिन्यू कर पाते हैं इसी फितरत के ऊपर जिस फितरत पे अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया था, ठीक है। इसका जवाब क्या है, हाँ या नहीं? सारे के सारे क्या उसी फितरत पे रह पाते हैं जिस फितरत पे अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया था? नहीं रह पाते, ठीक है ना, बस काफी है, एक जवाब काफी है, नहीं रह पाते। क्यों नहीं रह पाते? क्यों नहीं रह पाते भाई? अल्लाह ने फितरत बनाई, अल्लाह ने रोल बना दिए, तो फिर हमको क्या हो गया यहाँ पे आकर के जो है वो हम उस फितरत पे नहीं रह पाते। जैसे फितरत अल्लाह लती फतर अन्नास अलैहा, हमारी फितरत में है कि हमारा एक परवरदिगार है, हमारा एक जो है वो खालिक है, एक राजक है, ये हमारी फितरत में है, गूंधा हुआ है। लेकिन कितने हैं जो कि अल्लाह को एक मानते हैं, एक परवरदिगार मानते हैं, है? और एक ही परवरदिगार की इबादत करते हैं, उसी का हुक्म मानते हैं, कितने हैं? बहुत थोड़े से। तो क्यों नहीं रह पाते फितरत के ऊपर? जी, नफ्स और शैतान का निजाम भी बना दिया अल्लाह ताला ने, ठीक है ना, नफ्स और शैतान का निजाम भी बना दिया। नफ्स और शैतान का रोल क्या है, क्या क्या करता है ये, क्या करता है? इसका यही काम है कि अल्लाह की बनाई हुई फितरत को मस्ख करता है, खराब करता है, ठीक है ना। इसका वन लाइन रोल अगर आप डिफाइन करें तो वो क्या है, अल्लाह की बनाई हुई फितरत को खराब करता है, ठीक है। क्या इन्होंने लिखा कि वालेकुम सलाम, अल्लाह ने हमें फर्स्ट फितरत, फर्स्ट नहीं, फितरत सलीम पर पैदा किया है, तोरा फर्स्ट सलीम को थोड़ा सा फितरत सलीम को एक्सप्लेन कर दें प्लीज। फितरत सलीम पर पैदा किया है, सलीम फितरत है, यानी कि अल्लाह की पहचान हर इंसान के अंदर डाल के दुनिया में पैदा किया, अल्लाह की पहचान, ठीक है ना, ये भी आपने सुन लिया ऑलरेडी। उसके अलावा कि हमें सच अच्छा लगता है, ठीक है ना, अपने आप से, है आपसे कोई झूठ बोले आपको अच्छा नहीं लगेगा, जैसे ही आपको पता चलेगा इसने मेरे साथ झूठ बोला है आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको बुरा ही लगेगा। तो इंसान सच पसंद करता है, बेशक खुद दूसरों से झूठ बोले, लेकिन उससे जो है वो कोई झूठ बोले उसको पसंद नहीं आएगा, ये इसकी फितरत में। जुल्म, खुद दूसरों पे जुल्म करे, ठीक है ना, जब फितरत बिगड़ जाएगी तो खुद दूसरों पे जुल्म करेगा, लेकिन उसके ऊपर कोई जुल्म करे, उसकी बेटी के ऊपर कोई जुल्म करे, है ना, बाप वाल बाप बेटियों के बाप जो है अच्छी तरह से जानते हैं बेटियों से मोहब्बत होती है, बेटी के ऊपर कोई जुल्म करे हरगिज उसको अच्छा नहीं लगेगा, ये उसकी फितरत है कि उसको जुल्म अच्छा नहीं लगता, है ना, राहत मोहब्बत ये उसको अच्छा लगता है, ठीक है ना, ये उसकी फितरत है। सही, तो आपने जो फितरत के थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, देखे इतना काफी होगा, बाकी आप सोचते चले जाएं, इस तरह की बहुत सारी फितरतें आपको मिल जाएंगी जो कि अल्लाह ताला ने हमें दे के दुनिया भेजा है। तो नफ्स और शैतान, बल्कि शैतान नफ्स भी एक अलग से मखलूक नहीं, वो हमारे अपने अंदर ही है, अपना हमारा जुज है शैतान। शैतान का क्या रोल है कि वो अल्लाह की बनाई हुई फितरत को मस्त करने की कोशिश में लगा रहता है, ठीक है ना, अल्लाह को पहचानना छोड़ दो, अल्लाह की इबादत करना नहीं, किसी और की इबादत करो, अल्लाह की नहीं करो, अल्लाह की इबादत के साथ दूसरों को शरीक करो, ठीक है ना। तो अब अगर हमें ये बात समझ में आ गई, ठीक है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अब हम जो है वो जरा और अपने मकसद पर आते हैं, ठीक है ना, वो ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों को जो है वो जेंडर वाइज दो रोल्स में पैदा किया, जेंडर वाइज दो रोल्स में पैदा किया, एक रोल जो है वो मर्द का रोल है, एक रोल जो है वो औरत का रोल है, ठीक है। तो अब इनकी क्या फितरत बनाई, अगर हम सलीम फितरत वाले मर्दों को देखें और सलीम फितरत वाली जो है वो औरतों को देखें, तो क्या है कि मर्द के अंदर गैरत, ये उसकी फितरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखा है, और औरत के अंदर हया उसकी फितरत में रखा है, ठीक है। तो अब शैतान, राइट, शैतान का क्या काम है, क्या फिर उसका रोल क्या बन गया कि मर्द के अंदर से गैरत को निकाले, राइट, गैरत को जो है वो खत्म करे मर्द की, और औरत की हया को खत्म करे, ये शैतान का मकसद है जिंदगी, ठीक है ना, फितरत खत्म करना उसका मकसद है जिंदगी है। अब आप जो है वो क्लासिफिकेशंस करके अब आप शैतान के रोल्स को जो है वो फर्दर इलेबोरेट कर सकते हैं, फर्दर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो मर्द के रोल को रिवर्स करना, या मर्द के रोल को जो असल उसका रोल था उसको सप्रेस करना, और कोई दूसरा रोल जो है वो उसका, उसको ऐसा धोखा देना, ऐसा ट्रिक करना कि वो किसी और रोल को अपना रोल समझना शुरू हो जाए, राइट। तो ये मर्दों के साथ करेगा, औरतों के साथ के क्या करेगा कि वो अपने रोल को जो है वो भूलना शुरू हो जाए, या उसको डिनाई करना शुरू हो जाए, और जो है वो दूसरा रोल को ही वो अपने ऊपर अडॉप्ट करना शुरू हो जाए और अपना रोल समझना शुरू हो जाए। किसका काम है ये अल्लाह का काम नहीं है, ये रहमान का काम नहीं है, ये फरिश्तों का काम नहीं है, बल्कि ये किसका काम है, ये खालिसतन शैतान का काम, ठीक है ना, यहां तक बात क्लियर है। नहीं, यहाँ पे क्लियर तो हो गई, लेकिन आप बात ही गलत कर रहे हैं, अल्लाह ने ये रोल ही नहीं बनाया था, हया औरत के अंदर रखी नहीं थी अल्लाह ताला ने, ये बोल सकते हैं ना, और क्या बोलेंगे, हया अल्लाह ताला ने औरत में रखी नहीं थी, ठीक है ना। अब अगर आप ये समझते हैं तो फिर आप किसी और क्लास को जाकर के लें, राइट, हमारी क्लास आपके लिए नहीं है फिर, इसका मतलब अगर आप ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने औरत में हया रखी नहीं थी, ठीक है, हम तो ये कह रहे हैं ना कि अल्लाह ने औरत में हया रखी थी, शैतान उस हया को रिवर्स करने की कोशिश करता है, खत्म करने की कोशिश करता है, या सप्रेस करने की कोशिश करता है, ठीक है ना, हम और तो कुछ नहीं कह रहे अभी, राइट। तो ये है शैतान का काम। अब अगर आप अपने चारों तरफ नजर डालें कि ये वाले काम कौन लोग कर रहे हैं, है? कि मर्द के अंदर से गैरत को खत्म करना और औरत के अंदर से हया को खत्म करना, तो जो ये वाला काम करेगा तो फिर वो या तो खुद शैतान होगा, या तो वो खुद शैतान होगा, या वो कम अज कम शैतान की मानने वाला तो होगा ना, कम अज कम ये शैतान के रास्ते के ऊपर चल रहा है, वरना शैतान तो कुरान मजीद से पता चलता है कि सिर्फ जिन नहीं होते बल्कि इंसान भी होते हैं, तो इंसानी शक्ल का कोई शैतान है या जिन जिन की शक्ल का शैतान है, ठीक है। तो अब जो है ना वो गोल्स को रिवर्स करने के लिए शैतान फिर तरीके इस्तेमाल करता है। वो क्या करता है कि डिपेंडिंग ऑन व्हाट दैट इंडिविजुअल इज, उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, तो फिर वो ऐसे भी कर सकता है कि भाई जो उसका असल रोल है ना, उसके बारे में बदगुमानी पैदा कर दो। जैसे कि औरत का एक तो रोल है ना कि भाई हया, ठीक है, दूसरा उसका रोल क्या है कि अल्लाह ताला ने औलाद को इस दुनिया में भेजने का वसीला किसको बनाया, औरत को बनाया, मर्द को तो नहीं बनाया, ठीक है ना। ट्रांसजेंडरिज्म जो है, ये तो भाई मर्द और औरत को रिवर्स करने वाला तो है ना, वो तो शैतान ने फिर ये भी कर दिया ना, ये भी तो फितरत को बदतरीन तरीके से मस्क करना हो गया कि भाई आप अपने जेंडर को चेंज कर दें। लेकिन जेंडर भी जो है वो चेंज करना पड़ेगा ना, बगैर जेंडर चेंज किए हुए तो आप मर्द जो है वो अब किसी का दिल चाहे कि नहीं भी आई वॉन्ट टू हैव बेबीज, ठीक है भाई, पहले जेंडर चेंज करना पड़ेगा फिर जा करके। तो औरत के वास्ते से जो है वो औलाद को इधर भेजा, तो वो औलाद जब औरत के वास्ते से आएगी तो औरत ही ने फिर उसके बाकी सारी चीजें करनी है कि मर्द ने करनी है, नहीं मैंने तो बस लेबर रूम से आई हूँ, बस जो है वो मैंने अब उसके बाद जॉब पे जाना है, अब आप करें सारा काम। जॉब पे तो वो जा भी नहीं सकती, उसकी तबीयत भी ऐसी होती है, ठीक है। औरत ही को जो है वो हैज नफास के मसले अल्लाह ताला ने रखे, ये उसकी फितरत में रखे ना कि उसके अंदर हैज नफास औरत को आता है, मर्द को नहीं आता, ठीक है ना। हया, बच्चा पैदा करने का वास्ता बनाना, और हैज और निफास का सारा जो फंक्शन है औरत के साथ फिक्स कर दिया, ठीक है ना। अब शैतान क्या करता है, शैतान ने अपना जॉब करनी है, ये उसका जॉब रोल है ना, उसकी जॉब रोल ये है कि फितरत को मस्त करना है। तो अब वो क्या करता है कि फितरत के बारे में बदगुमानी पैदा करता है, राइट, फितरत के बारे में बदगुमानी पैदा करता है। और बदगुमानी कैसे, कि ये तो करने का काम है, ये क्या कर रही हो, अपना वक्त जाया कर रही हो, तुम्हारी सलाहियतें मुतासिर हो रही हैं, तुम्हारी सलाहियतों को जंग लग रहा है, यू आर नॉट प्लेइंग एनी इंपॉर्टेंट रोल इन द सोसाइटी, है ना, बस बच्चे पैदा कर रही हो। ये बस का जो लफ्ज है ना, ये काफी हो जाता है अक्सर, तो बस बच्चे पैदा करना, बस जो है वो बच्चों को पालना है, ये क्या कर रही हो तुम, ठीक है। तो वो बदगुमानी पैदा करता है रोल के बारे में, ताकि रोल इंसान छोड़ दे अपना और वो कोई दूसरा रोल जो है वो अडॉप्ट कर ले, ठीक है ना। अब अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली बड़ा हल्का सा लफ्ज है, ठीक है, हाँ तुम्हारा करियर डिस्ट्रॉय हो रहा है, आप कोई काम नहीं कर रहे, आप मुल्क की तरक्की में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, राइट, आप जो है वो क्या कहते हैं सस्पेंड बैठी हुई है, राइट, हाफ पॉपुलेशन मुल्क की सस्पेंडेड बैठी हुई है, ठीक है, कोई रोल नहीं प्ले कर रही है। अच्छा, ये तो हो गया शैतान का काम, या शैतान जो इंसान होते हैं जो शैतान का रोल प्ले कर रहे होते हैं, ये तो उनका काम हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, या बहुत ही कोई और लफ्ज इस्तेमाल करूं तो ज्यादा मुनासिब रहेगा, राइट, शोमई किस्मत, ये वाला लफ्ज जरा अदबी लफ्ज है, शोमई किस्मत, ये हमारे काबरीन सवाल करते हैं कि हम इस बदगुमानी को पैदा करने में हम शैतान की फुल फ्लेज्ड मदद कर रहे होते हैं, मर्दों की बात कर रहे हैं, बल्कि कुछ बहुत सारी औरतों की भी बात कर रहे हैं, बहुत सारी औरतें भी ये काम कर रही होती हैं, लेकिन मर्द जो है वो आगे आगे होते हैं इसके अंदर। हम इसको, औरत को अपनी अपने असल रोल से बदगुमान करने में बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रहे होते हैं, वो कैसे, ये आप बता दें, वो कैसे, ये आप बता दें। प्रोफेशनल लड़कियों के लिए भी हल निकाला गया है कि उनको लंबी लंबी छुट्टियां दे दी जाती हैं जब डिलीवरी हो या जो दीगर उमूर उनके होते हैं। हाँ, तो वो तो सिर्फ बच्चे पैदा करने वाले मसले के लिए हल निकाला गया है ना, बाकी सारे मसलों के हैज निफास भी खत्म करवा देते हैं उनका, और उनका जो है वो हया के लिए भी कोई ऑल्टरनेट हो जाता है, बहरहाल हो जाता है वो, आ जाते हैं बुरके में भी आप सब काम कर सकती हैं, तो हया का भी ऑल्टरनेटिव निकल गया। अच्छा, पहले तो ये बताएं ना, अपने जरा अपने गरेबान में झांक करके देखें पहले, ठीक है, वो ये है कि हम कैसे असिस्ट कर रहे होते हैं शैतान, कैसे अपने बेटियों को करियर ओरिएंटेड बनाते हैं। वी डोंट अप्रिशिएट और रेकग्नाइज देयर एफर्ट्स, ठीक है ना। मर्द अपने रोल वाला काम नहीं करते, सबसे पहला बात बिल्कुल यही, बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल सही नेल किया है मसले को नेल डाउन किया है। मर्द अपना रोल अदा नहीं कर रहे होते हैं, इस वजह से औरत को जो है ना वो उसके रोल से वो बदगुमान कर देते हैं। सबसे बड़ा मसला मर्दों का ये है, वो अपना रोल प्ले नहीं कर रहे, अपना रोल प्ले नहीं कर रहे होते हैं, और ये ट्रिगर करता है औरत को कि मैं क्यों अपना रोल प्ले करूं। जब ये अपना रोल नहीं प्ले करता बदबख्त इंसान, मैं अपना रोल क्यों प्ले करूं? राइट, दिस इज द नंबर वन इशू। मर्द का रोल क्या है? बंदगी करना अल्लाह की, जो उसके ऊपर है, उसकी बंदगी करना, राइट? और गैरत, जो अल्लाह ताला ने उसको दे करके पैदा किया था, वो गैरतमंद वाली जिंदगी गुजारते, बेगैरत वाली जिंदगी ना गुजारे, राइट? वो नहीं करता ये वाला काम। औरत कहती है फिर मैं क्यों करूं? शैतान के लिए आसान हो जाता है औरत को बरकरार, ठीक है ना? और दूसरा बड़ा मसला, दूसरा बड़ा जो हम रोल प्ले कर रहे होते हैं, वो ये कि हम उनके अपने रोल की बुराई कर रहे होते हैं, जैसे इन्होंने लिखा, और दूसरे रोल की उनके सामने तारीफ कर रहे होते हैं, ग्लोरिफाई कर रहे होते हैं, राइट? दूसरे रोल जो कि उनके नहीं थे, अल्लाह ताला ने बनाए, उनको हम ग्लोरिफाई कर रहे होते हैं, उनकी तारीफ कर रहे होते हैं। फलानी औरत नजर आ गई, मेरी कजन है या मेरी बहन है, देखो कितना जबरदस्त उसका करियर है, कितनी हाईली सो कॉल्ड एजुकेटेड है, कितना जो है वो मुल्क की तरक्की में अपना रोल प्ले कर रही है, और तुम क्या कर रही हो? बच्चे पाल रही हो, हालांकि बच्चे इसी के, राइट? तो ग्लोरिफाई करते हैं दूसरे रोल को जो कि इसका रोल नहीं है, राइट? और जो इसका रोल है उसको क्या करते हैं, उसके लिए कोई अच्छा सा लफ्ज बताएं, मैं भूल जाता हूँ, बार बार आता है लेकिन फिर भूल जाता हूँ। डी ग्लोरिफाई के लिए एक ज्यादा अच्छा वर्ड क्या होगा जी? डिग्रेड करते हैं ज्यादा, ठीक है ना? हम उसको डिग्रेड करते हैं, हम उसको यानी डिमिनिश करते हैं, हम उसको जो है वो स्लैंडर करते हैं उनके असल रोल को, राइट? उनके रोल को अहमियत नहीं देते हैं। अहमियत नहीं देना तो बड़ा हल्का लफ्ज है, उसको बल्कि हम डिग्रेड कर रहे होते हैं। तो ये किसका काम है करने का? ये कौन कर रहे हैं? ये हम किसका रोल प्ले कर रहे हैं? हम शैतान का रोल प्ले कर रहे हैं, राइट? हम शैतान के काम को असिस्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो कसूर तो मर्दों का निकल आया। फेमिनिज्म को बुरा कहते थे, औरत मार्च करने वालियों को बुरा कहते थे, ये मर्दों का कसूर है कि वो मार्च कर रही हैं। तुमने अपना कब रोल प्ले किया था? क्यों नहीं प्ले करते हो तुम अपना रोल, राइट? सारा कसूर दूसरे के ऊपर, हर चीज में सारा कसूर दूसरे के ऊपर, अपना नहीं मानना कि मैं क्या कर रहा हूं, जाहिल रह करके जिंदगी गुजार रहा हूं, ना मैंने अपना रोल जो है वो अदा करना है, ना मैंने किसी से सीखना है कि मेरा रोल किया है, ना सीखना है कि मेरा रोल किया है, राइट? और फजूलियात के अंदर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, और अपनी खाली नहीं बर्बाद कर रहे, अपनी बीवी की भी बर्बाद कर रहे हैं, और अपनी औलाद की भी नतीजतन बर्बाद कर रहे हैं। सही है, इल्जाम औरों को देते थे, कसूर अपना निकल आया। अब छोड़ो इस क्लास को, कहीं और चलते हैं जहां पे अच्छी अच्छी बातें होंगी, ठीक है? आगे चलते हैं, वरना अगर कोई बैनुल अक्वामी इदारा या कोई हुकूमत, एक मिनट, कंट्रोल बाय, मैंने कुछ और भी पॉइंट्स लिखे थे ध्यान में आए थे कि, हाँ दूसरी बात, ठीक है, एक तो हो गई कि उस रोल को जो है ना, जो किसी का रोल है उसको डिग्रेड करना, और जो है वो दूसरे रोल को जो उसका रोल नहीं है उसको ग्लोरिफाई करना, ठीक है? अच्छा, एक और भी तरीका होता है कि जिसके जरिए से जो रोल किसी का है उसको वो रोल अदा करने नहीं दिया जाए, ठीक है ना? एक तो हो गया ना, आपने मेंटली उसको टॉर्चर किया, मेंटली जो है ना वो उसको ऐसे ऐसे ताने दिए, ऐसे ऐसे अल्फाज कहे कि जिससे कि उसका अपना रोल जो है ना वो उसके आंखों में बुरा बन गया, और दूसरों का रोल जो है वो अच्छा बन गया। एक तो ये तरीका है, एक और भी तरीका है, एक और भी तरीका है कि भाई वो तो अपना रोल प्ले करना चाह रहा था या चाह रही थी, लेकिन उसको रोल प्ले करने नहीं दिया जा रहा, ये तरीका क्या होता है? ये भी जरा सा जहन पे जोर डालेंगे तो इंशाल्लाह ये भी जहन आ जाएगा जाते, क्योंकि चारों तरफ ये हो रहा है, ये डीमोटिवेशन हम कर चुके हैं डिस्कस को। दूसरा तरीका, दूसरे कामों में डाल देना, अच्छा जवाब है ये, ठीक है? दूसरे कामों में डाल देना, कैसे दूसरे कामों में डाल देना, ठीक है, उसको उसके रोल की स्किल्स नहीं सिखाई गई। ये भी डीमोटिवेशन ही का एक तरीका होता है, स्किल्स नहीं सिखाई जाए, ठीक है ना, तो ये भी एक्चुअली उसमें कवर हो गया, ठीक है। तालीमी निदाम में भेजकर, तालीमी निदाम में भी एग्जैक्टली यही होता है, अपने वालदैन की खिदमत। अभी हम खाली औरतों की बात नहीं कर रहे, हम ये बहुत जनरलाइज बात कर रहे हैं, किसी को भी उसका रोल प्ले करने से अगर आपको रोकना है, तो आपने सही जवाब दिया था पहले कि उसको जो है वो दूसरे कामों में डाल देना, दूसरे कामों में लगा देना, गैर जरूरियात की अहमियत नहीं, वो भी अहमियत दिलाना की बात नहीं हो रही है। देखें, दूसरे कामों में डाल देना का मतलब क्या होता है, कि उसको जो है ना वो ऐसे हालात पैदा कर देना उसकी जिंदगी के अंदर कि वो अपना रोल प्ले करना चाह भी रहा है तो वो कर नहीं सकता, रोल प्ले करना चाह भी रहा है तो वो कर नहीं सकता। जैसे कि हमारे मुल्क के अंदर, मुल्क खुदा दाद, ठीक है ना, कि बिजली का मसला, पानी का मसला, गैस का मसला, सिक्योरिटी का मसला, सेफ्टी का मसला, फलाना मसला, ढिमकाना मसला है, ढिमकाना भी मसला और फलाना भी मसला है ना। अब जो अपनी रोल प्ले करना भी चाहता है ना, उसको कहेंगे नहीं भाई तुम्हें तो जा करके पानी भर करके लेकर के आना है, ठीक है ना, अभी तुम अपना रोल वोल प्ले करना छोड़ो, पानी भर करके लेकर के आओ, गैस का इंतजाम करो, बिजली का इंतजाम करो, सेफ्टी का इंतजाम करो। या ये कि महंगाई, इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ा दो कि औरत जो है वो घर बैठ करके अपने घर को देख ही ना सके, उसका गुजारा ही ना हो रहा हो मर्द की कमाई में, कि उसको खुद बाहर निकल के कमाई करनी पड़े। और मर्द का जो रोल था कि वो जरा अल्लाह की इबादत भी करे, दीन भी सीखे, दीन भी समझे, दीन पे कुछ अमल भी करे, नहीं, इतना महंगाई कर दो, इतने मुआशी मुआशरती मसाइल पैदा कर दो कि बस उसको जो है ना वो चाहने के बावजूद वो अपना रोल प्ले ना कर सके, चाहने के बावजूद रोल प्ले ना कर सके, ऐसा उलझा दो, ऐसा उलझा दो, ठीक है ना। तो एक तो हो गया ना कि आप मेंटल लेवल पे काम कर रहे हैं कि भाई यानी अपने रोल की लाइकनेस ही खत्म हो गई और डिसलाइकनेस शुरू हो गई और दूसरे के रोल की जो है वो लाइकनेस शुरू हो गई। जैसे मिसाल के तौर पर आप सऊदी अरब में रहते हैं, आप सऊदी अरब में ना बिजली का मसला अल्हम्दुलिल्लाह, ना पानी का मसला, सिवाय इसके कि आजकल जो है वो कुछ जगहों में पानी नहीं आ रहा है, पाइपलाइन फट गई थी, वरना तो पानी का कोई मसला नहीं है, गैस का कोई मसला नहीं है, गैस का सिलेंडर भी आ जाता है, सेफ्टी सिक्योरिटी भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, राइट। तो अब इनको कैसे करें, दो जमा दो चार रोटियां, दो जमा दो चार रोटियां, रोटी नजर आए उसको हर तरफ क्योंकि भूखा है बेचारा, यानी उसकी जरूरियात ही पूरी नहीं हो रही, ठीक है ना। या खानदानी मसाइलों के अंदर लड़ाई झगड़े में, वो तो खैर वो हुकूमतें लड़ाई झगड़ों में भी क्या हो जाएंगी, वो तो हमारा अपना करने का काम होता है, हम खुद जो है वो लड़ाई झगड़े पैदा करते हैं खानदानों के अंदर। तो ये शयातीन के ये काम है ना, अपने दुश्मन को कम अज कम पहचाने तो ना, तब कभी उस तब उससे बचने का कोई इंतजाम भी कर सकेंगे, और दुश्मन के कामों को पहचाने तब जो है वो कुछ समझ में आएगा ना कि मैं क्या कर रहा हूं, दुश्मन के हाथों में खेल रहा हूं, तो भाई निकलने की कोशिश करो दुश्मन के हाथों से, ठीक है। तो अब ये औरत मर्द के रोल्स के अंदर भी ये चीज इन्फ्लुएंस करती है महंगाई और इन मसलों की वजह से, ठीक है ना। अब आप देख लें हमारे यहाँ भी आगे और भी बातें आएंगी इसके ऊपर, ठीक है, कि बहुत डिलिबरेटली ऐसा निजाम हुकूमत रखा गया है, सूबों की बात कर रहा हूं मैं अभी फिलहाल खाली, बेढंगे किस्म के सूबे है ना, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक गवर्नर एक प्राइम चीफ मिनिस्टर के लिए मुमकिन ही नहीं। भाई एडमिनिस्ट्रेटिवली आपको ऐसे यूनिट्स बनाने हैं जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन हो सके, नहीं बनने ही नहीं देना, है ना। ऐसा जो है वो इस्तेमाल करना लोगों को एक दूसरे के खिलाफ असबियत के नाम पर और सूबे के नाम पर, आजकल देखने पता नहीं क्या क्या चल रहा है, मुझे लोग भेजते रहते हैं कभी एक रात में देख भी लेता हूँ, पता नहीं कोई नया मसला शुरू हो गया है सूबों के दरमियान का मसला, है ना भाई, क्या तो क्या यार, कोई मसला हल करने को, तो हमारे बचपन में जो है वो कालाबाग डैम का नाम सुनने में बड़ा आता था, वो कहे नहीं हम जान दे देंगे कालाबाग डैम नहीं बनने देंगे, मुझे नहीं पता वो सही था गलत था, लेकिन ऐसे होता है, ठीक है ना, लगे हुए एक दूसरे के खिलाफ, ठीक है, जहां ये मसाइल ना हो वहां से ज्यादा तफरी में लगा देना, इसको डिस्ट्रैक्शन कहते हैं, तफरीहात में डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। बहुत सारे तरीके होते हैं शैतान के, है ना। उसकी भी एक जंबील होती है, उम्र अय्यार की जंबील ना, जिसके अंदर वो एक से एक जो है वो चीजें मौजूद थी। इसके उम्र अय्यार की जंबील से भी ज्यादा इसके पास, शैतान के पास जंबील है। तो अब ये मसलों में एक और भी बहुत बड़ा, जिसकी वजह से कि ये इतना महंगाई और इतना मसला उलमाए कराम, राइट, जो दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी जिनके पास होती है, उन्होंने इल्म हासिल किया होता है, उनको उनके असातिज़ा ने पढ़ाया होता है, उनको तैयार किया होता है कि आपने दीन के उलूम की हिफाजत करनी है और अगली जनरेशन तक इन उलूम को पहुंचाना है। इतनी महंगाई कर दो, ऐसे हालात पैदा कर दो कि मौलवी को जो है ना वो, यानी पेट भरने के लिए अपना और अपनी औलादों का उसको फिर दुकान करनी पड़े, उसको जो है वो जॉब करनी पड़े, है ना। 2 दिन पहले हमारी पार्क, 2 दिन नहीं कल ही बल्कि सुबह को पार्क में जो है वो एक मौलाना साहब से मुलाकात हुई, अच्छे खासे मदरसे के पढ़े हुए जो है फारुक उत तहसीन मौलाना साहब है, वो जो है वो सफाई का यूनिफॉर्म पहन करके जो है वो पार्क के अंदर सफाई का काम कर रहे थे। बड़ा अफसोस उनको भी था कि मैं क्या कर रहा हूँ, हमें भी बहुत अफसोस हुआ। ये तो यार दीन के चौकीदार थे, ठेकेदार नहीं थे, चौकीदार थे, इन्होंने तो ये काम करना था, लेकिन गुजारा ही नहीं हो रहा। अब कितने उलमाए कराम हैं सऊदी अरब के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर, राइट। अभी हमारे शेख अल-हदीस साहब जो है वहां से आए, कहने लगे इतने उलमा हैं, कोई ग्रोसरी शॉप में काम कर रहा है, कोई जो है वो टैक्सी चलाने का काम कर रहा है, कोई फ्रा, भाई ये तो आपका काम नहीं था लेकिन मजबूर कर दिया, राइट। यानी निजाम को अगर हम टारगेट करें तो निजाम का ये कसूर है, ऐसा मजबूर कर दिया, ठीक है, अपना काम नहीं कर सकते, अपना रोल प्ले नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी उन्होंने और लिखा कि डिवेलप कंज्यूमरिज्म ड्रिवन माइंडसेट्स और एडवांस गो बियॉन्ड मींस देन बोथ पार्टीज नीड टू वर्क, है ना। ऐसा भी होता है कि आपने अपनी वॉन्ट्स को जो है वो जो है ना वो, यानी अपनी जरूरियात को जो है, ख्वाहिशात को अपनी जरूरियात बना लिया, तो फिर उसके बाद आप दोनों पेरेंट्स जो है वो जॉब कर रहे हैं, बच्चों के लिए कोई भी नहीं, बच्चे जो है वो आउटसोर्स कर दो स्कूल में या किसी और सिस्टम के पास। मेक देम शो ऑफ एंड कम्पीट इन डेकोरेटिंग हाउसेस, लैविश वेडिंग्स, एक्सपेंसिव कार्स एंड हॉलीडेज बियॉन्ड मीन्स, ठीक है। बेशक तो शैतान की उम्रों यार जो जो जंबीर है ना, उसके अंदर ये सारे तरीके मौजूद हैं, और ये सारे तरीके जहां पे जो अप्लाई होता है, क्या कहता आपने, आपने जो टर्म बताई थी ना हाइपो पर्सनलाइज्ड, तो शैतान का तरीका जो है ना ये हाइपो पर्सनलाइज, हाइपर पर्सनलाइज था या हाइपो पर्सनलाइज, है ना। हर बंदे के लिए एक अलग सोल्यूशन है उसके पास, हाइपर पर्सनलाइजेशन, ठीक है ना, सबको एक भी नहीं हो जाता, हर के हिसाब से उसने अलग अलग तदबीरें रखी हुई हैं, ठीक है ना। दिस इज आवर एनिमी दैट वी आर डीलिंग विद, राइट, एंड वी आर सो अनअवेयर एंड अनकॉन्शियस ऑफ दैट एनिमी, है ना, कि भाई हमारा कोई दुश्मन नहीं है, कोई किसी की मजाल नहीं कि मुझे जो है वो सीधे रास्ते से हटा सके। अभी बयान हुआ था जुम्मे का ना, तो वो एक भाई जो है वो सुन, ऐसे कभी चलते फिरते आ जाते हैं, टहलते टहलते तो सुन करके चले गए, फिर उसके बाद लंबा सा मेरे पास एतराजी मैसेज भेज दिया उठा करके ना। तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर औलाद जो है वो बड़ी होकर के गलत रास्ते पे पड़ जाए, लेकिन माँ बाप ने उसकी जो है वो अच्छी तरबियत कर दी है, तो फिर माँ बाप की तो जिम्मेदारी खत्म हो गई। का बिल्कुल सही बात है, माँ बाप की जिम्मेदारी खत्म हो गई कि औलाद जो है वो अगर खुद जो है वो गलत रास्ता अख्तियार करे, लेकिन अब चूंकि हमें उनका पता है तो आगे से जो उन्होंने ना वो नूह अलैहिस्सलाम की मिसाल डाल दी, कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी तो गुमराह हो गया था। मैंने कहा भाई नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद की परवरिश में कोई कमी कोताही छोड़ी थी, वो तो अल्लाह के नबी थे, वो तो मासूम थे, गलतियों से मासूम, क्या हम अपने आप को नूह अलैहिस्सलाम समझ बैठे कि हमने भी अपनी औलाद की तरबियत में और तालीम में कोई कमी कोताही नहीं उठाई, अब नहीं छोड़ी, अब जो है वो बड़ा होकर के अगर खराब होता है तो वो हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है। हमें तो, यानी हकीकत तो है कि हमें तो पता भी नहीं तालीम और तरबियत होती क्या है, पता नहीं अपने आप को नूह अलैहिस्सलाम से कंपेयर करना हम कैसे शुरू हो जाते, या सहाबा से कंपेयर करना कैसे शुरू हो जाते, बगैर इल्म के, बगैर अमल के, बगैर जो है वो, ठीक है। बहरहाल क्लास तो इसी में होगी, मतलब आगे बढ़ेंगे, 5 मिनट अभी भी हमारे पास है, तो इंशाल्लाह उसको इस्तेमाल करेंगे। तो आगे फरमाते हैं कि वरना अगर कोई बैनुल अक्वामी इदारा या कोई हुकूमत लोगों में तकसीम कार करती, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज तकसीम करती, और किसी जमात को बढ़ई के काम के लिए, किसी को लोहार के काम के लिए, किसी को खाकरों के काम के लिए यानी सफाई सुथराई करने वाले के काम के लिए, किसी को पानी के काम के लिए, किसी को खुराक के लिए मुकर्रर करती, तो तो कौन उसके हुक्म की ऐसी अताअत करता कि दिन का चैन और रात की नींद खराब करके उस काम में लग जाता। ठीक है, तो एक तो गवर्नमेंट असाइंड जॉब्स होते हैं, लेकिन उसमें भी तो वही लोग आकर के अप्लाई करते हैं और जॉब उनको मिलती है जो कि उस काम का कुछ शौक होता है। ज्यादातर तो शौक वाले लोग ही अपने फील्ड के अंदर काम कर रहे होते हैं ना। ठीक है, बहुत कम लोग होते हैं जो कि उनकी शौक की फील्ड कुछ और होती है, लेकिन मजबूरन वो किसी ऐसी फील्ड में काम कर रहे होते हैं। लेकिन इवन जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, उनमें भी लोग जो होते हैं ना, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो वही होते हैं जिनको कि उससे मुनासबत होती है उस वाली फील्ड से। ठीक है, तो अल्लाह जब जल्ला शानहू ने हर इंसान को जिस काम के लिए पैदा किया है, उस काम की रग़बत उसके दिल में डाल दी, उसकी फितरत में पैदा कर दिए, वो बगैर किसी कानूनी मजबूरी के इस खिदमत ही को अपनी जिंदगी का काम समझता है, उसके जरिए अपनी रोजी हासिल करता है। इस निजाम मुहकम का ये नतीजा होता है कि इंसान की सारी जरूरियात चंद टके खर्च करने से बआसानी हासिल हो जाती है। ठीक है, यानी थोड़ा सा आपको पैसा खर्च करना होता है, आपको जाके काश्तकारी नहीं करनी पड़ती, आपको हल नहीं चलाना पड़ता खाना खाने के लिए। ठीक है ना, पक्का पकाया खाना आपको दूसरों का बनाया हुआ मिल जाता है, सिला सिलाया कपड़ा मिल जाता है, या बस आखिरी जो बिल्कुल लास्ट चेन होती है ना, बस कुक करना, वो बेगम साहिबा को दादू सारा करना पड़ता है, बाकी सारा काम दूसरों ने किया हुआ होता है। सिला सिलाया कपड़ा मिल जाता है, रेडीमेड भी मिल जाता है, या वो थान भी मिल जाता है, बना बनाया फर्नीचर मिल जाता है, आपको खुद तो अपना फर्नीचर नहीं बनाना पड़ता है ना। कितना मजा आता है जब दरख्त काट करके फर्नीचर बनाना पड़ता है, अगर खुद से तैयार शुदा मकान सब कुछ एक इंसान कुछ पैसे खर्च करके हासिल कर लेता है। अगर यह निजाम ना होता तो एक करोड़पति इंसान अपनी पूरी दौलत लुटा कर भी गंदम का एक दाना हासिल ना कर सकता। ठीक है ना, क्योंकि उसके बस में तो नहीं था कि जाकर के हल चलाता, करोड़पति हो गया लेकिन हल तो नहीं चला सकता जाकर। इसी कुदरती निजाम का नतीजा है कि आप होटल में कयाम पजीर होकर जिस जिस चीज से फायदा उठाते हैं, अगर उनका तजिया करें तो मालूम होगा कि आटा अमेरिका का, माशाल्लाह, घी पंजाब का, गोश्त सिंध का, मसाले मुख्तलिफ मुल्कों के, बर्तन और फर्नीचर मुख्तलिफ मुल्कों का, काम करने वाले बैरे बावर्ची मुख्तलिफ शहरों के आपकी खिदमत में लगे हुए हैं। ठीक है ना, खुसूसन सऊदी अरब के अंदर तो लोग हैरान रह जाते हैं, अमेरिका से आए हुए लोग। वैसे तो अमेरिका, हजरत ने उस जमाने में लिखा होगा जिस वक्त अमेरिका के जो है ना, वो जरा प्रोडक्शन वहीं पे हुआ करती थी, अब तो प्रोडक्शन भी नहीं होती अमेरिका के अंदर, सारी चाइना में हो रही होती है या वियतनाम में हो रही होती है। बहरहाल, लेकिन अमेरिका के लोग जब सऊदी अरब आए तो हैरान रह गए कि मक्का टावर्स के अंदर जो नाश्ता होता है ना, उसके अंदर दुनिया जहान की चीजें मौजूद होती हैं, ऐसी तो अमेरिका के अंदर यूरोप के अंदर मौजूद नहीं होती। ठीक है ना, तो कहाँ कहाँ से जो है वो अल्लाह ताला ने लोगों को लगाया हुआ है। तो एक लुकमा जो आपके मुंह तक पहुंचता है, इसमें लाखों मशीनों, जानवरों और इंसानों ने काम किया है, तब ये आपके जायके को सवार सका है। आप सुबह घर से निकले, 3-4 मील जाना है आपको, जिसकी ताकत या फुर्सत आपको नहीं है, आपको अपने किसी करीबी मकाम में टैक्सी और रिक्शा या बस खड़ी हुई मिलेगी, जिसका लोहा ऑस्ट्रेलिया का, लकड़ी बर्मा की, मशीनरी अमेरिका की, ड्राइवर फ्रंटियर का, यानी खान साहब होंगे कोई अगर, तो कंडक्टर जो है वो यूपी का, ये कहाँ कहाँ के सामान और कहाँ कहाँ की मखलूक आपकी खिदमत के लिए खड़ी हुई है। इन सबको डंडे मार करके किसी ने खड़ा नहीं किया होता, अल्लाह ताला ने उनके दिल में ये चीज पैदा कर दी। ठीक है ना, अब हजरत इस बात को इतना ज्यादा खोल करके बयान कर रहे हैं तो मकसद क्या है कि अल्लाह ताला की अजमत को बयान कर। ठीक है ना, वरना इसके अंदर फिर आप कीड़े निकालना चाहें तो कीड़े हर जगह निकल सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है, लेकिन ओवरऑल मकसद वो तो आप इसको डिनाई नहीं कर सकते कि बात है, कि हकीकत तो ये है कि अल्लाह ने दिल में डाला है। तो यानी कहाँ कहाँ की मखलूक आपकी खिदमत के लिए खड़ी है कि सिर्फ चंद पैसे देकर आप उन सब से खिदमत ले लें। उनको किस हुकूमत ने मजबूर किया है या किसने पाबंद किया है कि ये सारी चीजें आपके लिए मुहैया कर दें, सिवाय इस कानून कुदरत के जो कुलूब के मालिक ने, दिलों पे हुक्मरानी करने वाले ने तकवीनी तौर पर हर एक के दिल पर जारी फरमा दिया है। आजकल सोशलिस्ट ममालिक ने, ठीक है ना, अब ये हजरत देखें उस जमाने की बात करें जिस वक्त कम्युनिज्म स्लैश सोशलिज्म अगेंस्ट कैपिटलिज्म, ठीक है ना, अमेरिका जो था वो कैपिटलिज्म का वो था फ्लैग बेरर, और यूनाइटेड, ये जो यूएसएसआर था, ये सोशलिज्म कम कम्युनिज्म का था। है। और ये कम्युनिज्म जो है ना, ये फैल रहा था, और खुसूसन अफगानिस्तान में तो तकरीबन पूरा कंट्रोल में कर चुका था, और पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा ये घुस चुका था, ठीक है, स्पेशली एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, ठीक है, एशिया सुर्ख है के नारे मारे जा रहे थे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अंदर। हाँ, चाइना जो था वो भी उस जमाने में सोशलिस्ट था, अब तो चाइना भी पूरा का पूरा कैपिटलिस्ट हो गया, तो कैप तो सब कुछ ही कैपिटलिस्ट कैपिटलिस्ट हो गया, कैपिटलिस्ट हो गया। आजकल सोशलिस्ट ममालिक ने इस कुदरती निज़ाम को बदलकर इन चीज़ों को हुकूमत की जिम्मेदारी बना लिया है, ठीक है। अब ये मुफ्ती साहब हैं, मौलाना साहब हैं, मदरसे में रहने वाले, मदरसे में पढ़ने पढ़ाने वाले, ठीक है ना, लेकिन आलिम दीन का जो मुकम्मल काम है ना, वो है कि उसने अवामुन्नास की रहनुमाई करनी है, ठीक है। तो अवामुन्नास की रहनुमाई, तो भाई जो अवामुन्नास को जो चीज़ें फेस कर रही हैं, जो चीज़ें उसको फेस हो रही हैं, जब तक उनका शऊर आलिम खुद भी हासिल नहीं करेगा और आवाम को भी नहीं बताएगा, तो उस वक्त तक तो आलिम की जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी ना। ये और बात है कि उलमा में भी फिर कैटेगरीज होती हैं, ठीक है ना, कुछ उलमा जो हैं वो बहुत ही एकेडमिक रोल को प्ले कर रहे होते हैं, वो ये काम नहीं कर सकते, उनका काम है एकेडमिकली जो है वो अपने उलूम की हिफाजत करना, लेकिन सारे उलमा एकेडमिक काम नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो फिर वो काम भी खत्म हो जाएगा थोड़े दिनों में, तो उनको जो है वो अवामुन्नास में काम करना होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमाए हक जो है अवामुन्नास में काम कर रहे होते हैं, तो उनको फिर अवामुन्नास से मुतअल्लिक चीज़ों के बारे में अपने आप को अपडेट भी रखना होता है, और उनको फिर रहनुमाई भी करनी होती है, ठीक है। तो मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह उन्हीं हजरात में से एक हैं, तो पूरा जो है वो सोशलिज्म को काउंटर कर रहे हैं, तो उसके लिए उनको सबसे पहले जबर व जुल्म के जरिए इंसानी आज़ादी सल्ब करनी पड़ी, जिसके नतीजे में हजारों इंसानों को कत्ल किया गया, हजारों को कैद किया गया, बाकी मानदा इंसानों को शदीद जबर व जुल्म के जरिए मशीन के पुर्जों की तरह इस्तेमाल किया गया है ना। ये जो इनकलाब आया वहां पर, सुर्ख इनकलाब, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1917 में शायद आया था ना, मार्क्सिस्ट लेनिन वगैरह के साथ, तो जिसके नतीजे में अगर किसी जगह कुछ अशिया की पैदावार बढ़ भी गई तो इंसानों की इंसानियत खत्म करके बढ़ी, तो ये सौदा सस्ता नहीं पड़ा। कुदरती निजाम में हर इंसान आजाद भी है, और कुदरती तकसीम तबायर की बिना पर खास खास कामों के लिए मजबूर भी, और वो मजबूरी भी चूंकि अपनी तबीयत से है, जो अल्लाह ने बनाई है, इसीलिए उसको कोई भी जबर महसूस नहीं करता। सख्त से सख्त मेहनत और जलील से जलील काम के लिए खुद आगे बढ़ने वाले और कोशिश करके हासिल करने वाले हर जगह हर जमाने में मिलते हैं, और अगर कोई हुकूमत उनको इस काम के लिए मजबूर करने लगे तो ये सब उससे भागने लगेंगे। इसी वजह से ये जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन था, ये 70 साल मैक्सिमम इसकी हुकूमत इसकी इसकी उम्र रही, वो भी पूरी नहीं रही, ठीक है। बहरहाल यहाँ तक हम आज के बात रोकते हैं, क्योंकि वक्त खत्म हो गया है, बस कोई कोई सवाल या कोई कमेंट हो तो उसके लिए हम रोक सकते हैं, अदरवाइज अगली क्लास में शामिल। ठीक है, अगर कोई सवाल नहीं है तो हम क्लास खत्म करते हैं, वह आखिर दावाना अलहमदुल्ला।